पहला पत्रस, पत्रस प्रेरित द्वारा लिखा गया पहला पत्र। पहला पत्रस अध्याय एक। पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपदुकिया, एशिया और बिथुनिया में परदेशी हैं, परमेश्वर पिता तुम्हें बहुत पहले ही से जानते थे और उन्होंने दूसरे लोगों से तुमको अलग किया है, इसलिए तुमने उनकी बात मानी और यीशु मसीह के खून से तुम शुद्ध किए जा चुके हो। परमेश्वर की ढेर सी कृपा और शांति तुम्हें मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिन्होंने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा में नया जन्म दिया है, अर्थात एक न मिटने वाली और अमर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो परमेश्वर की ताकत से विश्वास के द्वारा उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखे गए हैं जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। इस वजह से तुम मगन होते हो, हालांकि जरूर है कि तुम इस समय तरह तरह की परीक्षाओं की वजह से उदास हो। यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तपाए हुए बर्बाद ना होने वाले सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है, यीशु मसीह के लौटने पर बड़ाई, इज्जत और महिमा का कारण ठहरे। तुम बिना यीशु को देखे उनसे मोहब्बत रखते हो और बिना देखे विश्वास करके ऐसे खुश और मगन होते हो जो बयान से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि अपने विश्वास का नतीजा अर्थात गुनाहों की माफी हासिल करते हो। इसी मुक्ति के बारे में उन भविष्यवक्ताओं ने होशियारी से जांच पड़ताल की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद आने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर इशारा करता था। भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया गया था कि वे अपनी नहीं लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। उन बातों की खबर अब तुम्हें उनसे मिली जिन्होंने स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की मदद से तुम्हें खुशी की खबर सुनाई। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं। इस वजह से अपने मन को काम करने के लिए तैयार रखते हुए सचेत होकर यीशु मसीह के लौटने के समय मिलने वाली कृपा की पूरी आशा रखो। आज्ञा मानने वाले बच्चों की तरह अपनी ना समझी के समय की पुरानी चाह मत रखो, लेकिन जैसे तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र हैं, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए कि तुम हे पिताजी कहकर उनसे प्रार्थना करते हो, जो बिना तरफदारी किए हरेक के काम को देखकर इंसाफ करते हैं, अपने परदेशी होने के समय को परमेश्वर के डर में बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी आजादी चांदी, सोने या बर्बाद होने वाली चीजों से नहीं हुई, लेकिन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के खून से हुई। उनका ज्ञान तो दुनिया को बनाए जाने से पहले ही से जाना गया था, लेकिन अब इस आखिरी जमाने में तुम्हारे लिए सामने लाया गया, जो उनके द्वारा उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिन्होंने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और इज्जत दी, ताकि तुम्हारा भरोसा और उम्मीद परमेश्वर पर हो। सत्य की आज्ञा मानने से तुमने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है, ताकि आपस में एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सको। अपने पूरे मन से दूसरों से प्रेम रखो, क्योंकि तुमने बर्बाद हो जाने वाले नहीं लेकिन बर्बाद ना होने वाले बीज से परमेश्वर के जिंदा और हमेशा ठहरने वाले शब्द से नया जन्म पाया है। क्योंकि हरेक इंसान घास की तरह है और उसकी सारी खूबसूरती घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, लेकिन प्रभु का वचन सदा काल तक रहेगा, और यह वही खुशी का संदेश है जो तुम्हें सुनाया गया। पहला पत्रस अध्याय 2। इसलिए हर तरह की दुश्मनी, चालाकी, कपट, डाह और बदनामी को दूर रखते हुए नए जन्मे हुए बच्चों की तरह निर्मल आत्मिक दूध की चाह रखो, ताकि उससे मुक्ति में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने सचमुच यीशु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उनके पास आकर जिन्हें लोगों ने फालतू समझा, लेकिन परमेश्वर की निगाह में चुने हुए और कीमती जीवित पत्थर हैं, तुम भी खुद जीवित पत्थरों की तरह आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का पवित्र झुंड बनकर ऐसी आत्मिक भेंटें लाओ जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को कबूल हो सके। इसलिए बाइबल में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में नीव का चुना हुआ और कीमती पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वह किसी तरह से शर्मिंदा नहीं होगा। इसलिए तुम विश्वास करने वालों के लिए वह कीमती है, लेकिन जो लोग आज्ञा नहीं मानते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार साबित किया वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। ऐसे लोग सच्चाई को कबूल ना करने की वजह से केवल ठोकर खाते ही नहीं, लेकिन ठोकर खाने के लिए ठहराए भी गए थे। लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश, शाही पुरोहित, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर के लोग हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधेरे में से अपनी अनोखी रोशनी में नेवता दिया है उनकी अच्छाइयां दिखलाओ। पहले तुम उनके लोग नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और मुसाफिर समझकर उन दुनियावी अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। दूसरे लोगों के बीच तुम्हारा चाल चलन अच्छा हो, इसलिए कि जिन बातों में वे तुम्हें बुरा समझकर बदनाम करते हैं, तुम्हारे भले कामों की वजह से कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की बड़ाई करें। यीशु की खातिर नागरिकों के लिए बनाए गए हर इंतजाम के अधीन रहो, राजा के अधीन इसलिए कि वह सबके ऊपर शासन करता है, अधिकारियों के अधीन इसलिए क्योंकि वे गलत करने वालों को सजा देने और सही करने वालों को सम्मानित करने के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से बेअक्कल लोगों की अज्ञानता की हरकतों को बंद कर दो। अपने आप को आजाद जानो, लेकिन अपनी इस आजादी को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, और अपने आप को परमेश्वर के सेवक समझ कर रहो। सबकी इज्जत करो, भाई बहनों से प्यार रखो, परमेश्वर से डरो और राजा को सम्मान दो। हे सेवको, पूरे आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना सिर्फ भले और नम्र लोगों के लेकिन निर्दयी लोगों के भी। अगर कोई परमेश्वर का ध्यान रखते हुए बेइंसाफी की वजह से दुख उठाता है तो यह बड़ी प्रशंसा की बात है, क्योंकि अगर तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो इससे परमेश्वर को खुशी होती है। तुम ऐसे जीवन के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे सामने एक नमूना छोड़ गए हैं कि तुम उनकी तरह बनो। यीशु ने ना कोई गुनाह किया और ना ही उनके मुंह से छल की कोई बात निकली। उन्होंने गाली सुनकर गाली नहीं दी और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी। उन्होंने बिना तरफदारी के इंसाफ करने वाले परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सुपुर्द कर दिया। वह खुद ही हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम उन गुनाहों से किनारा करके अच्छे कामों के लिए जिए। उनके घायल किए जाने की वजह से परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता सुधर चुका है। पहले तुम भटकी हुई भेड़ों की तरह थे, लेकिन अब अपने प्राणों के चरवाहे और देखरेख करने वाले के पास वापस आ चुके हो। पहला पत्रस अध्याय 3। हे पत्नियों, इसी तरह तुम भी अपने पति के अधिकार को स्वीकार करो, उनके भी जो परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे बिना कुछ कहे सिर्फ तुम्हारे चाल चलन ही से वे यीशु को मानने वाले हो जाएंगे। बाहरी खूबसूरती के बारे में ज्यादा मत सोचो, जो तरह तरह के बालों के स्टाइल, महंगे जेवरात और सुंदर कपड़ों से आती हैं। शांत स्वभाव की एक भीतरी खूबसूरती है जो परमेश्वर की निगाह में बहुत कीमती है। वही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। पुराने समयों में परमेश्वर से प्यार करने वाली महिलाएं इसी तरह से अपने आप को संवारती थी। वे परमेश्वर पर भरोसा रखती और पति की अधीनता में रहा करती थी। उदाहरण के लिए सारा अब्राहम को मेरे मालिक कहकर बुलाया करती थी। अगर तुम उसी की तरह वही करो जो ठीक है और किसी बात से भयभीत ना हो तो उसी की बेटियां ठहरोगी। इसी तरह से तुम पतियों अपनी पत्नियों की इज्जत करो, उसके साथ समझदारी के साथ पेश आओ। वो कमजोर हो सकती हैं, लेकिन तुम दोनों परमेश्वर के नए जीवन के वरदान में बराबरी के साथी हो। ऐसा करने से तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर में रुकावट नहीं आएगी। निचोड़ की बात यह है कि तुम सभी को एक मन, सहानुभूति और प्यार से भरा, दयालु और नम्र होना चाहिए। बुराई के बदले बुराई और बेइज्जती के बदले बेइज्जती ना करो, लेकिन आशीर्वाद दो, क्योंकि ऐसी ही तुम्हारी बुलाहट है और तभी तुम आशीष पाओगे। क्योंकि जो अपनी भलाई की सोचता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपनी जीभ को बुराई और होंठों को झूठ से बचाए। उसे दुष्टता से मुड़कर भला करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ मेल से रहना चाहिए, इसलिए कि यीशु मसीह की आंखें माफ किए हुए लोगों और उनके कान उनकी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। बुरा करने वाले लोगों से वह अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अगर तुम सही और भला करने का मन बना चुके हो तो कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन सच तो यह है, अगर तुम जायज काम करने पर तकलीफ उठाते हो तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। इसलिए ना ही घबराओ और ना चिंतित हो, बजाय इसके यीशु को अपना जीवन का मालिक समझकर उपासना करो। अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद के बारे में पूछे तो उसे समझाने के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन यह भी इज्जत, दीनता और शुद्ध विवेक के साथ करना, ताकि जो लोग तुम्हारे मसीह चाल चलन की खिलाफत करते हैं तुम पर आरोप लगाते समय शर्मिंदगी महसूस करें। यदि परमेश्वर को यह मंजूर है तो हम सही काम करें और तकलीफ उठाएं, बजाय इसके कि गलत करने की सजा पाएं। क्योंकि बेगुनाह यीशु मसीह ने भी हमारे गुनाहों के लिए एक बार दुख उठाया, ताकि परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वालों के साथ परमेश्वर का मेल हो सके। उन्होंने देह में तो मौत सह ली, परंतु पवित्र आत्मा से जिलाए गए। तभी उन्होंने जाकर न्यायिक हिरासत में बंद आत्माओं को खुशी की खबर सुनाई। नूह के जहाज बनाए जाने के समय परमेश्वर इन्हीं अन आज्ञाकारियों का इंतजार करते रहे थे कि वे अपना मन बदलें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जल परले के बाद केवल 8 ही लोग बच पाए। यह बपतिस्मे की तरफ इशारा है जो खुद मुक्ति पाने को दिखाता है। यह देह की गंदगी साफ नहीं करता है, लेकिन यह परमेश्वर के आगे शुद्ध विवेक की अपील है। यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने की वजह से जो स्वर्ग पहुंचकर परमेश्वर के साथ सारे अधिकार के साथ विराजमान है, स्वर्गदूत, प्रधानताएं एवं ताकतें उनके अधीन हैं। पहला पत्रस अध्याय 4। इसलिए जबकि मसीह ने देह में होकर दुख उठाया तो तुम भी इसी रवैये को हथियार की तरह ले लो। इसलिए कि जिसने देह में दुख उठाया है वह गुनाह से आजाद हो गया है। इसलिए इस देह में अपनी बाकी जिंदगी मनुष्य की अभिलाषाओं में नहीं, लेकिन परमेश्वरीय इच्छा के अनुसार बिताओ। क्योंकि दुनियावी लोगों की शैली, जैसे कामुकता, पियक्कड़पन, रंगरेलियां, मदपान गोष्ठियां तथा घृणित मूर्ति पूजा में जो तुमने समय गंवाया, वही बहुत हुआ। इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी बुरे कामों में अब उनका साथ नहीं देते हो, इसलिए वे तुम्हारी निंदा करते हैं। लेकिन यीशु जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेंगे, उन्हीं यीशु के सामने उन लोगों को अपनी करनी का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि मर चुके लोगों को भी खुशी की खबर इसलिए सुनाई गई ताकि देह में तो उनका न्याय मनुष्यों के अनुसार हो, लेकिन आत्मा में वे परमेश्वर के मुताबिक जिएं। सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए समझदार होकर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेम अनगिनत गुनाहों को ढांप देता है, इसलिए एक दूसरे से प्रेम रखना सबसे बड़ी बात होगी। एक दूसरे की पहुनाई बिना कुड़कुड़ाए करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर की तरह तरह की कृपा के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको सिखाने का काम मिला है वह ऐसा बोले जैसे कि परमेश्वर ही उसके माध्यम से बोल रहे हैं। यदि तुम्हें दूसरों की मदद करने की योग्यता मिली है तो परमेश्वर से प्राप्त सारी शक्ति से ऐसा करो, तब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हर बात में प्रशंसा और सम्मान मिलेगा। सारी महिमा और अधिकार उन्हीं का है, ऐसा ही हो। प्रियो, दुख रूपी अग्नि परीक्षा जिसमें से होकर तुम्हें जाना पड़ रहा है, उसके कारण यह समझकर आश्चर्यचकित ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब बातें हो रही हैं। इसके बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में से गुजरने से तुम मसीह के साथ उनके दुखों में हिस्सेदार बनोगे। बाद में सारी दुनिया के सामने उनकी अनोखी महिमा के प्रकट होने पर तुम्हें बड़ी खुशी होगी। यदि यीशु मसीह के कहलाए जाने की वजह से तुम्हें शर्मिंदा किया जाए तो खुश होना, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में रहता है। किसी भी तरह से तुम में कोई खूनी, चोर, दुष्टता का काम करने वाला और दूसरों के कामों में दखल देने वाला होने की वजह से दुख ना उठाए। लेकिन यदि कोई मसीह होने के कारण दुख उठाए तो शर्मिंदा ना हो, लेकिन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से ही इंसाफ शुरू हो, इसलिए अगर इंसाफ की शुरुआत ही हमसे होगी तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं अपनाया। यीशु के लोगों के लिए उनके विश्वास के कारण इस दुनिया के जीवन को खत्म करके भविष्य के जीवन में दाखिल होने तक बहुत दुख है, तो मसीह का इनकार करने वाले भविष्य के जीवन के दुख को कैसे सह पाएंगे। इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, सही चाल चलते हुए अपने आप को विश्वास योग्य सृजनहार के सुपुर्द कर दें। पहला पत्रस अध्याय 5। तुम्हारे यहां के बुजुर्ग अगुओं के समान मैं भी मसीह की पीड़ाओं का गवाह रहा हूं और आने वाली महिमा का भी हिस्सेदार हूं। तुम्हारे अगुओं को दिलासा दिलाना चाहता हूं कि वहां के परमेश्वर के लोगों की रखवाली करो। यह भी इसलिए नहीं करना है या इससे कुछ आमदनी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मार्गदर्शन में खुशी से। जिन लोगों की देखरेख करनी है उन पर जोर जबरदस्ती ना करो, लेकिन सभी के लिए नमूना बनो। जब प्रधान रखवाले का आना होगा तुम्हें इतना शानदार ताज दिया जाएगा जो कभी मुरझाता नहीं है। इसी तरह से नवजवानों, तुम भी अपने अगुओं की मानो। तुम सभी एक दूसरे के प्रति दीनता और नम्रता का बर्ताव करो, इसलिए कि
परमेश्वर घमंडी का मुकाबला करते हैं लेकिन नम्र इंसान के पक्ष में काम करते हैं।
इसलिए शक्तिशाली परमेश्वर की अधीनता में नम्रता से जीना सीखो, ताकि सही समय पर वह तुम्हें बढ़ाए। अपनी सारी चिंताओं को उन्हीं पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारी देखभाल वही करते हैं। अपने आप को काबू में रखो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस तलाश में रहता है कि किसको अपना निशाना बनाए। अपने विश्वास में मजबूत रहकर उसका मुकाबला करो, और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो इस दुनिया में हैं, इसी तरह की पीड़ा सह रहे हैं। तुम्हारी थोड़ी देर के कष्ट सहने के बाद सारी कृपा के परमेश्वर, जिन्होंने तुम्हें मसीह में अपनी युगानुयुग की महिमा के लिए बुलाया है, खुद ही तुम्हें सिद्ध, मजबूत, बलवंत और स्थिर कर देंगे। उन्हें महिमा और प्रभुता सदा मिलती रहे, ऐसा ही हो। मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वसनीय भाई समझता हूँ, थोड़ा सा लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर की सच्ची कृपा यही है, इसी में बने रहो। वह जो तुम्हारे साथ चुनी गई है और बेबीलोन में है, और मेरा बेटा मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम और आदर से एक दूसरे से मिलो। तुम सभी को जो यीशु को अपना चुके हो, शांति मिले।